संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे। समय सार परमागम का कर्ता क्रम अधिकार चलाना है, अपने क्रम में जो चला रहा है इसका मंगलाचरण हो गया था अभी जयपुर में, इसलिए 69 और 70 गाथा है, 69 और 70 गाथा, उससे इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। जीवा जीवाधिकार में यह आत्मा वरुणादि और रागादि से भिन्न है। वरुणादि में 20 भाव और रागादि में 9, इस प्रकार 29 प्रकार के भावों से भिन्न है। उनमें गुणस्थान मायणा स्थान भी आ जाते हैं। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं वो सब मैं नहीं हूं, मैं उनसे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं, इतनी बात जीवाजीवाधिकार में स्पष्ट की। अब कर्ता कर्म अधिकार में मैं उनका कर्ता नहीं हूं और मैं उनका भोक्ता भी नहीं हूं, इस बात को स्पष्ट करते हैं। हम गाथा पढ़ के देखें तो इसमें पहली ही पंक्ति में लिखा है कि जावेना वेदि विशेषं तरन्तु आदासवान दोनम्पि अन्नानि तावविशो को हादिशबत्थ दोय जीवो को हादिशबत्थ तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्येवम बंधो भणिदो खलु कव्यदरे सिंहम। आवाज कुछ गूंज नहीं रही है, थोड़ी मंदी करो। कौन है, कोई कंट्रोल करने वाला है? आवाज गूंज रही है। जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक यह आत्मा क्रोधादिक में बरतेगा, अज्ञानी रहेगा और क्रोधादिक में बरतेगा, और क्रोधादिक में बरतेगा तो उसके कर्मों का संचय होगा। इस प्रकार जीव के कर्म बंध का वर्णन किया गया है और ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। देखो वहां तो ये कहा था कि जीव को अजीव से भिन्न जानना, कहा था ना जीवाजीवाधिकार में, तो वहां अजीव के ही उनने 29 भेद किए थे और जिन्हें उनमें वर्णादि और रागादि को कह दिया था। तो रागादि में आश्रव भाव आ गए कि नहीं आ गए? तो अजीब भी आ गए, आश्रव भी आ गए, आ गए ना। और यहां ये कहा कि आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा, अभी आश्रव अधिकार तो आया नहीं, ये तो कर्ता क्रम अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूं कि जीवाजीवाधिकार का ही उत्तरार्ध है, क्योंकि जीवाजी जीवाधिकार में ये जीव अजीव का माने 29 प्रकार के भावों का ना तो अनुरूप है और ना उनका स्वामी है, इतना कहा। और अब ये कह रहे उनका कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, वही बात तो आगे कर रहे ना। तो चाहे यहां आश्रव कहा हो और चाहे वर्ण कहा हो, चाहे रागादि कहा हो, चाहे अचेतन कहा हो, चाहे अजीब कहा हो, चाहे पुद्गल कहा हो, उन सब का अर्थ वे 29 प्रकार के भाव जानना, ये आंख बीच की समझ लीजिए बस खत्म। 29 में से किसी एक का नाम लें तो 29 ही समझना, भले ही एक का नाम कहा हो, क्योंकि बार बार तो 29 के नाम लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुरुदेव बोलते थे ना कि भाई देखो आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर एक का नाम ले देते थे, तो वो एक से ही नहीं कह रहे, भले ही उसका नाम लिया हो, वो जो बात कह रहे हैं वो पूरी सभा से कह रहे हैं कि देखो भैया सावधानी से सुनना चाहिए। तो वो अकेले एक आदमी को कह रहे थे कि सारी सभा को, ऐसे ही यहां कोई एक शब्द पकड़ लें तो उसका तुम आंख मीच के 29 भाव अर्थ कर देना, और ऐसा जगह जगह आएगा। देखो इसी का जो मंगलाचरण किया था ना, तो उसमें लिखा था एका करता चिदेह में कर्म कोपा दयोमी इत्यज्ञानाम समित ममता करती कर्मा प्रवृत्ति। एक आत्मा करता है और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं, यह अज्ञानियों की मान्यता है। अज्ञानियों की इस मान्यता को चारों ओर से समन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। फिर तो ये बात एक कैसी है, वो ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है, वो चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे हम। लेकिन आत्मा करता और क्रोध आदि कर्म, तो क्रोध क्रोध माने क्या होता है, क्यों क्रोध माने क्रोध होता है, गुस्सा होता है, कौन जो अपन को आता है ना, जिसमें अपन गालियां बकने लगते हैं। अरे भाई साहब, क्रोध नाम का एक कर्म भी होता है और वो प्योर पुद्गल की रचना है, वो कारमान बरगणा से बना हुआ है, है ना? लेकिन जब हम ज्ञानावरणादि कहते हैं तो हमारी समझ में द्रव्य कर्म की बात हो रही है, समझ में आता है। और जब क्रोध आदि कहते हैं कि राग आदि कहते हैं तो हमारी समझ में आती है कि ये चैतन्य के विकार की बात है, ये भाव कर्म की बात है। क्यों होता क्या नहीं होता, ऑटोमेटिक। लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ भी कहें तो उसमें वो द्रव्य कर्म भी लेना और वो भाव कर्म भी लेना। कौन सा द्रव्य कर्म? जो क्रोध नाम का द्रव्य कर्म है, जिसके उदय से एक क्रोध नामक भाव कर्म पैदा होता है। ये जो गुस्सा आता है ना हमको, तो उसका अंतरंग निमित्त कौन है? क्रोध नामक कर्म का उदय है ना, और वो अनिवार्य है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हमें गुस्सा आए और उस समय क्रोध कर्म का उदय नहीं हो। ऐसा तो हो सकता है कि क्रोध कर्म का उदय हो और गुस्सा ना आए, क्यों? कि ऐसा नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग कभी खुला ही नहीं रहता। कर्म के उदय में हमें अनिवार्य रूप से विकार करना पड़े, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब हमें विकार हो रहा है उस समय वो कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो जब गुस्सा आ रहा है तब वो कर्म का उदय द्रव्य कर्म भी है ना, और जो गुस्सा जो आ रहा है ना ये भाव कर्म है। अब और भी कोई होता है गुस्सा? ये दो गुस्सा तो हो गए, दो क्रोध तो हो गए। कौन कौन से? एक द्रव्य क्रोध, एक भाव क्रोध। आप जानते हैं 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं ना, उनमें एक प्रकृति का नाम क्रोध भी है, बाकी 147 बची। जानते हैं? जानते तो सभी हैं, वे ध्यान नहीं जाता है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं कि नहीं? प्रकृति कौन? प्रकृति बंद क्या होता है? प्रकृति तो स्पष्ट जड़ है ना, प्रदेश और प्रकृति है, प्रदेश बंद प्रकृति बंद। तो प्रकृति उन 148 प्रकृतियों में क्रोध नाम की प्रकृति है ना। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उनमें चौथी नंबर नाम की क्रोध नाम की प्रकृति है। मिथ्यात्व मिश्र मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व फिर अनंतानुबंधी क्रोध है ना, ये चौथे नंबर की है। फिर उसके बाद में भी आएगी आठवें नंबर पे, फिर बारहवें नंबर पे क्रोध का नाम आएगा क्या नहीं। तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं, एक एक नहीं चार चार क्रोध नाम की चार प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याखानावरण क्रोध, प्रत्याखानावरण क्रोध और संजलन क्रोध है ना। तो क्रोध नाम के चार द्रव्य कर्म हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि द्रव्य कर्मों में भी चार कर्म की प्रकृतियों का नाम क्रोध है। क्यों बैला थी ध्यान में भाई, और वो जो हमें जो गुस्सा आया इनके उदय में वो भी ये क्रोध है, वो भाव क्रोध है। अब और भी कोई क्रोध है क्या विपिन भाई? और भी है। ये जो आंखें लाल लाल हो गई, ये चेहरा तमतमाने लगा, फड़फड़ाने लगा, ये मुंह से गालियां निकलने लगी, दांत मिसमिसाने लग गए, ओंठ फड़कने लग गए, जो हम नाटक की स्टेज पे दिखाते हैं कि जब मालूम पड़ता है गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ना तो वो द्रव्य कर्म किसी को दिखाई देता है और ना वो भाव कर्म किसी को दिखाई देता है, ये सबको तो ये दिखाई देता है। हम कैसे निर्णय करते हैं कैसे गुस्सा आ रहा है, हम तो यही देखते हैं ना। इसे बोलते हैं नो कर्म नाम का कर्म। क्यों? तीन हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो क्रोध भी कितने तरह का हो गया, और ये तो अकेला क्रोध हो गया। वो कहते हम क्रोध कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम आश्रव कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम अजीब कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, अचेतन कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, समझे ना, पुद्गल कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना। ये भेद विज्ञान का शास्त्र है। समय सार में, जीवाजीवाधिकार में और कर्ताक्रम अधिकार में 29 प्रकारों से भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान कराया। और वो भिन्न जब माना जाए, जब हम ये माने कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं और मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। 144 गाथाएं हो गई। फिर कोई कहने लगा कि ठीक है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, नो कर्म में नहीं हूं, भाव कर्म में नहीं हूं, लेकिन कर्म दो प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। शिष्य क्या कहता है? कर्म दो प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। डाकू दो प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। गुस्सा दो प्रकार का होता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा। क्यों? आचार्य देव कहते हैं होते होंगे, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब वे मैं नहीं हूं, जब वे कर्म मेरे नहीं हैं, जब मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो फिर उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से मुझे क्या प्रयोजन है, ये बता। क्यों समझे? जब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्त्वयो, ये होने के बाद भी तू उनमें अच्छे बुरे का भेद कर रहा है, इससे तेरे मन का चोर पकड़ा गया है? कि रूमाल कैसा है? मुनिराज से पूछ, महाराज ये रूमाल कैसा है? तब महाराज ने एक सूत मात्र रखने का नक्की किया है, तो ये रूमाल अच्छा है कि बुरा है, इसके विवेक से उनको क्या लेना देना, बोलिए। ये मंदिर कैसा है? कि मंदिर कैसा है? मंदिर जैसा है और कैसा है? माने कर्म कर्म है, اس میں کوئی اچھے برے کا بھید کرنے سے کوئی لابھ نہیں ہے. یعنی تو کسی نہ کسی طریقے کا سمبندھ اس سے جوڑنا چاہتا ہے. یعنی میں کہوں گا کہ ہاں کچھ کرم اچھے ہیں کچھ برے ہیں, تو اچھے تو کرنا چاہیے نا, سمجھے نا. وہ میرے انگلی پکڑ کے چمڑا پکڑنے کا, ہاتھ پکڑنے کا کہ ترکیب لگا رہا ہے. آچاریہ کہتے ہیں کہ نہیں, بالکل نہیں. جب جو اپنا کوئی جسے لینا ہی دینا نہیں ہے, اس سے اچھے برے کا کیا پریوجن ہے؟ کیوں یہ پڑوسن ہے, ہے تو خوبصورت نا, لیکن میں پوچھتا ہوں پڑوسن تیری کوئی نہیں ہے نا, پھر اس کو خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے اس سے تجھے کیا لینا دینا؟ اس میں تیرے من کی کچھ وکرتی نہیں ویکت ہو رہی ہے کہ اس میں خوبصورت اور بدصورت کا بھید کرنے سے تیرے کو کیا پریوجن ہے؟ بولیے. نہیں آپ کچھ بھی کہو لیکن ہے تو فرق. ایسی گاتھا آئی پرتن سال میں, کیوں ابھی پتا رہتا ہے ہیمچند جی, اس میں سکھ پرنامادھیکار میں سکھادھیکار میں ایسی گاتھا ہے کہ آپ کچھ بھی کہو لیکن پنیہ اور پاپ میں انتر تو ہے. کہ کیا انتر ہے کہ اسپشٹ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک کے سامنے ساری بھوگ ساماگری اپستھت ہے. مول کہا تھا ایسا لاؤ تو میں نکال کے بتاؤں, سمجھے نا, اپستھت ہے. اور دوسرے کے سامنے روکھی روٹی بھی اپلبدھ نہیں ہے, اس لیے پنیہ پاپ میں انتر نہیں ہے. جو تم یہ بات کہہ رہے ہو یہ ہمیں جستی نہیں ہے. یہ ہوگی قریب 74ویں گاتھا, قریب اس کے آس پاس ہوگی, دیکھتا رہوں. ہاں میری 74ویں ہی نکلی ہے. جدی سنتی پنانی پرنام سمبھوانی بیوہانی جنیتی بیتنم جیوانم دیو دنتانام. کیا کہتے ہیں آچاری؟ تو پن ہیں لوک میں, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن یہ تیرے لیے کریں گے کیا؟ کہ تیرے کو وشے تشنا اتپن کرنے کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ کیا تیرے کو جو ہیں تو تیرے کو وشے تشنا ہی پیدا کریں گے. میں نے ہمارے پن کے ادے سے خوبصورت پتنی, انکول گھر, ایئر کنڈیشن مکان, سب بڑھیا بڑھیا مل گیا. اور ڈائننگ ٹیبل پر پاردرشی برتنوں میں رکھے ہوئے کیا تمہارے گانٹھیا بڑھیا بڑھیا جو تمہارا نمکین میٹھا وغیرہ جو کھاتے ہو نا, ہمیں تو نام زیادہ آتے نہیں آپ کے, کیوں وہ سب رکھے ہیں ایک دم. تو یہ بنا پنیہ کے ادے کے تو سمبھو نہیں ہے نا. پاپ کے ادے والوں کو تو روکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہے, کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پنیہ ہے, اس سے کہہ رہا تھا اس سے سدھ ہوتا ہے کہ پنیہ ہے. پنیہ یدی ودمان ہے تو لوک میں, یدی پنیہ یدی ودمان ہے تو وشے تشنا ہی پیدا کریں. وہ میرا چھند میں نے انپدا انواد کیا ہے, یاد نہیں ہے تو یہاں رہتا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ تم کو کریں گے کیا, فائدہ کیا ہے؟ بولو, تم ڈائبٹیز کے مریض ہو, بلڈ پریشر ہائی ہے, تم نہ نمکین کھا سکتے ہو نہ میٹھا. تو جو تم نے سجا کے رکھے ہیں ٹیبل پر تو ہمارے لیے ہے نا پنکج بھائی. تمہیں تو ایک فائدہ ہوگا کہ دیکھ دیکھ کے من للچائے گا. وہ کریں گے کیا وہ پنیہ کے ادے کہ تمہارے وشے تشنا پیدا کریں, ایسا لکھا اس میں. پنیہ یدی ودمان ہیں تو وشے تشنا پیدا کریں گے. تو یہ اچھی چیز ہے کیا؟ ارے ایک بچہ جو ہے اس کو زکام سردی ہو گئی ہے, کھانس رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی ٹھنڈی چیز مت کھلانا, اور سامنے سے برف بالا نکلا برف کی کلپی برف کی کلپی ٹھنڈی میٹھی, اور بچہ نے رونا شروع کیا. وہ سمجھایا لیکن مانا نہیں, تو غصے میں جا کر گئے کلفی والے, کل سے اس روڈ پر نہیں نکلنا. کیوں سا, یہ تو سرکاری ہے نا لوگ, آپ ہمیں نہیں روک سکتے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, ہم آپ کے گھر میں گھسے ہوں تو بولو کہ نکلنا تو چپ چاپ نکل جانا, چلنا میں نہیں. کہ کیوں, کہ ہمارا بچہ روتا ہے, کہ تمہارا بچہ نہیں روئے گا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے. کیوں, کہ کلفی تو تبھی بکے گی نا جو تمہارا بچہ روئے گا. ہم تو بچہ جہاں روتا دیکھتے ہیں تو اور کھڑے ہو جا کر کے بیٹی کلفی دیتے, جہاں نہیں روتے ہیں ٹوٹتا چلے جاتے ہیں. کیوں, کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. تو آپ کوشش کرتے ہو کہ بیٹے کے کان میں کلفی شبد بھی نہ پڑے, سامنے کلفی دیکھنے میں نہیں آئے, اس میں آپ کا ہت ہے نا. تو ایسے ہی آپ بھی پانچ اندریوں کے وشے بھوگوں کے مریض ہو, کیوں, اور ان کے بھوگنے سے بھینکر دردشا ہونے والی ہے چار گتی چتر گتی کی. کیوں, اور سارے بھوگ تمہارے سامنے ایک دم کھڑے ہو جائیں تو تمہارے لیے فائدہ ہے کہ لابھ. وہ لگا لیں چترگتی میں پریبھرمن کا کارن ہے, یہ پن ہے تو کیا, کیوں کیوں تم بار بار کہتا ہے کہ پن ہے پن ہے پن ہے پن ہے. دیکھو میں بھائی گجراتی میں پڑھتا ہوں, پرنام جن انیک ودھ جو پن نو استتو چھے تو پن ای دیوانت جیو نے وشے تشنودبھو کرے. ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہتے ہیں پن دیووں کے انت تک اس جیو کو وشے تشنا کا ہی اتپن کرے گا, اس کا اور کوئی لابھ تو ہے نہیں. سمجھے نا, ہاں جو کا ٹیکا میں جو کا ادھارن دیا ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی پن پاپ ہیں لیکن یہ ہیں کیا, ہیں کیا, کہ یہ آشرو ہیں, یہ جیو نہیں ہے. کیا کہیں, یہ پن اور پاپ کے بھاو آشرو بھاو ہیں, جیو بھاو نہیں ہے. یہ کہاں بتایا, آشرو ادھیکار میں. اب یہاں گاتھا آپ نے کیا چل رہی, جا رن وید وشیشن ترنت آدانوان دونم پی انانی تاوجسو کو ہاد سے بٹھ دو جیوے. کہ جب تک آتما آتما اور آشرموں میں بھید نہیں جانے گا. اب وہ آشرم ادھیکار اپنے اس لیے گئے تھے, مانے وہ پن پاپ میں اور آتما میں بھید نہیں جانے گا, آشرم میں بھید نہیں جانے گا. اور پن پاپ کے ادے سے ہونے والی بھوگ سامگری اور پاپ کے ادے سے ہونے والی پرتکول سامگری, ان سب سے بھگوان آتما جڑا ہے یہ نہیں جانے گا. یہ ساری چیزوں میں وہاں سے وہاں تک لینی ہے. انہیں عجیب سے لکھا میں نے 29 پرکار کے بھاو سب لینے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ میں کب سکھی ہوں گا, یہ سنسار سے کب چھوٹوں گا, کرم بندھن سے کب چھوٹوں گا. تو ان نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو چھوٹے گا, 3 سال بعد فلاں. ابھی جوتی سے پوچھا نا, ابھی جن آپ کے کھوٹے چل رہے ہیں, ابھی جب سنی بیٹھے گا وہ فلانا اترے گا, راہو پہ جائے گا نیچے جائے گا, 5 سال بعد آپ کا اچھا آئے گا. ڈیٹ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے؟ اب یہاں بھی آپ چاہ رہے ہمیں ڈیٹ بتائی جائے, تو ان نے ڈیٹ نہیں بتائی. ان نے کہہ دی جب تک تم آتما اور آشرم میں بھید نہیں جانے گا تب تک یہ کرم بند ہوتے رہیں گے. سمجھ لیں کیا ہوگا, کہ جب تک تم آتما اور آشرم میں بھید نہیں جانے گا تب تک تم اجانی رہے گا. گاتھا میں ہے تو جاب رنا بیدی وشیش انترم, جاب مانے جب تک, رنا مانے نہیں, بیدی مانے جانتا ہے, وشیش انتر آدھا آتما اور آشروان آشرمن میں, ان دونوں کے بیچ میں جب تک بھید نہیں جانتا ہے تب تک یہ آتما اجانی رہتا ہے. और जब तक अज्ञानी रहता है तो क्रोधादिक में बरतता है, और जब तक क्रोधादिक में बरतता है तो कर्मों का संचय होता है, और कर्मों का संचय होता है तो फिर कर्म आत्मा से बंध जाते हैं। ऐसा बंधन की प्रक्रिया सर्वज्ञ भगवान ने कही है। इसकी टीका में अम्बे चंद्राचार्य ने एक बहुत मार्मिक बात कही। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर पढ़ूंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा कि जैसा कि हम अपने घर में जाते हैं तो हम बिल्कुल निर्द्वंदपने से चले जाते हैं, दरवाजे की घंटी नहीं बजाते हैं, किसी को आवाज नहीं लगाते हैं, मे आई कम इन सर नहीं बोलते हैं, एकदम दरवाजा खुला हो तो एकदम अंदर चले जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं, बैठक में चले जाते हैं, जेब में से चाबी नहीं, तिजोरी की चाबी खोल लेते हैं, वहां हाथ डाल लेते हैं। आपको मन में शंका होती है कि कोई टोक देगा तो? जिस लोक में जिसको हम अपनी चीज समझते हैं उसमें हमारी प्रवृत्ति निशंक होती है, और हम दूसरे के घर में जाते हैं जब तो बिल्कुल गेट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, घंटी हो तो घंटी बजाते हैं, नहीं चौकीदार को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, खुला है गेट तो भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। मान लो चौकीदार नहीं देखे, कोई नहीं देखे तो थोड़े बहुत अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसे जैसे चोर घुस रहा हो सशंक वृत्ति से अंदर प्रवेश करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। और यदि वहां जाके बैठक में बैठ जाए, अब अगर साहब बराजी आइए मैं अभी आया और दूध चाय लेके आने के लिए चला जाए तो भी ऐसे बैठे रहते हैं, किसी चीज को ऐसा हाथ तक नहीं लगाते। तो बच्चा हो तो उसे नहीं छूना नहीं किसी की चीज को छूना नहीं, क्यों इतने सत्संग क्यों करते हैं, उसने तो आदर करके बैठाया है। अपने घर में और पराए घर में ये फर्क होता है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया ये है कि बम्बई में आपके घरों में मजदूरी करने के लिए नौकर नौकरानी आते हैं, सुबह से शाम तक चौका बर्तन करते हैं, सफाई करते हैं, मंडे के कोई तकलीफ करते हैं, आपका एयर कंडीशन घर उसमें आराम से वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और फिर शाम को कहते हम घर जा रहे हैं तो अपन कहेंगे आप तो यहीं सो जाना, तेरे घर में कौन है, बाल बच्चे हैं नहीं, देश गए हैं, अकेला है, वहां जाके क्या करेगा, यहीं सो जा। वो समझता है कि सेठ जी कोई मुफ्त में नहीं सुला रहे मुझे, और डबल हाजिरी देने वाले नहीं है, रात की ड्यूटी के पैसा नहीं देने वाले हैं, ये इसलिए सुला रहे कि इन्हें रात को जरूरत पड़ेगी तो मुझसे काम ले लेंगे, क्या मुफ्त में नहीं है। वो कहते नहीं साहब मैं तो घर ही जाऊंगा, घर में है क्या, एक नाली के सामने एक छोटी सी कोठरी है, वो यहाँ क्या बोलते बम्बई में उसको, झोंपड़ी नहीं, वो झुग्गी झुग्गी, और गंदी गंदी बासू आ रही है, ऊपर से इतना गरम गरम भयंकर गर्मी है, उसमें जाकर के लेटना चाहता है, पर आपके एयर कंडीशन घर में से भागना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि जैसा खुल के पांव पसार के मैं अपने घर में लेट सकता हूँ ऐसा यहाँ नहीं लेट सकता हूँ, यानी सीधा लेटा कर ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वहां जल्दी सुबह जल्दी उठ जाना, कितनी बात है, इधर नहीं उधर 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 मैं माना जाए। वो उस निशंक पने नहीं, वो निशंक पने की क्या कीमत है बसंत भाई, समझ रहे हैं ना, अपनेपन से निशंक पना आता है, उसे अपनापन नहीं है, तो एयर कंडीशन घर भी उसे अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी उसमें उस झोंपड़ी में उसे अपनापन लगता है, कोई टोकने वाला नहीं है कि तू यहां ऐसा क्यों बैठा, टांग पे टांग क्यों रखी तूने, हाथ पे ऐसा क्यों रखा, नंगे सिर क्यों बैठा, खल में ना, और वहां पचास सत्य हैं तो उसमें वो निशंक प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जो जिसको अपना मानता है उसमें निशंक प्रवृत्ति होती है। तो इनने उदाहरण दिया कि आत्मा और ज्ञान एक ही है, इनमें तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध तो आप जानते हैं ना, अग्नि में और गर्माई में जो है, ज्ञान और आत्मा में है, मैंने जुदी जुदी है ही नहीं, बिल्कुल एक ही है। तो उसके साथ में ज्ञान में हमारी निशंक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान हमारा ताद हम है, हमारा काम है, हमारी तादात्म प्रवृत्ति है। तो उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव क्रोध को भी अपना मानता है, जैसा ज्ञान को मानता है ऐसा क्रोध को मानता है, तो क्रोध में भी निशंक प्रवृत्ति करता है। यदि क्रोध को ये पर मान ले तो 29 बोलों में जो हमसे भिन्न है वे, और एक दफे मन में आ जाए तो इसमें भी इसकी प्रवृत्ति निशंक नहीं होगी, सशंक रहेगा। तो ये कहते हैं कि अज्ञान क्या है कि इन्हें अपना मानना, कैसा अपना मानना, ज्ञानादि जैसा अपना मानना। ज्ञान को तो अपना मानना, वो तो है अपना, और क्रोधादि अपने नहीं है। देखो अभी थोड़ा सा जरा पंकज भाई ये हटके बात है, कैसी अपन को तो, अपन तो उन लोगों में से है ना जिनमें क्रोध और केवल ज्ञान और सबको एक साथ परिद्रव्य में डाल देते हैं ना, अब यहाँ ज्ञान को उधर घुसेड़ रहे हैं और क्रोध को उधर भगा रहे हैं, तो सीमा रेखा में देखना, मतलब वो दिमाग में चढ़ा रहेगा तो ये बात अंदर नहीं घुसेगी, ख्याल में आ गया, शुरुआत है ना। तो वो कहते हैं ज्ञान में तो निसंग प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, और क्रोध यानी राग के साथ मेरी निसंग प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर में तो आत्मा की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, न ज्ञानी की न अज्ञानी की। अज्ञान भाव के कारण अज्ञानी की क्रोधादि भावों में निसंग प्रवृत्ति होती है, वो कह रहे हैं। जैसे ज्ञान में प्रवृत्ति होती है निसंग की क्रोधादि में, और उसकी वजह से भी कर्म आते हैं तो उसकी वजह से बंद हो जाता है। इतनी सी बात है, जब तेरी ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुके निसंग भाव से तो तेरा काम तो हो सकता है। तो यहां पर दो भेद कर दिए, निर्मल पर्याय के साथ में अभेद स्थापित किया और राग आदि पर्यायों के साथ में भेद स्थापित किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आखिर एक ही मां की दोनों संतानें हैं, भगवान आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, भगवान आत्मा में राग पैदा होता है, और एक को अपना और एक को पराया, ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। इसके लिए मेरा बहुत पुराना उदाहरण है, अब आपके लिए नया है कि पुराना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 50 साल से मैं देता आ रहा हूं ये उदाहरण, बहुत मान में खेलेंगे इस बात का, इस गाथा को समझने के लिए कि एक बहू के शादी बेटे की होके आए, दो चार साल में जब घर सब लोग तरसने लग जाए कि बेटा नहीं होता, बेटा कब होगा कब होगा कब होगा, और उस बहू के गर्भ रह जाए तो कितनी खुशियां घर में मनाई जाती हैं। क्यों? फिर आठवां महीना आता है तो हजारों लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, गाले जाते हैं, हर एक आदमी आता है कि नहीं आता है, हैं? और फिर एक बच्चा होता है, महीना दो महीने का होता है तो कोई आदमी आता है तो माँ अपने बड़े गौरव के साथ उसकी गोद में रख देती है और वो 100-200 की नोट निकाल के उसके हाथ में, और वो कितना कितना खुश होते हैं, सब बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। अब वो बच्चा पैदा हुआ ना, कितनी खुशी का कारण है, लेकिन वही बच्चा शादी होने के पहले हो जाए तो क्या होगा? वो समझना, बच्चा होने की प्रक्रिया तो एक ही है, चाहे वो शादी होने के पहले हो गए चाहे बाद में हो गए, उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन वो शादी होने के बाद जो बच्चा आता है उसका उसी दिन से स्वागत की तैयारियां होती हैं, ते माताएं बहने स्वेटर क्या बुनने लगती हैं, पलने की व्यवस्था होने लगती है, और क्या क्या होता है ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। क्यों? और यदि वो कुंवारी कन्या के गर्भ रह जाए तो जिस दिन पता चले उसी दिन से कैसा स्वागत होता है, अम्मा जी का भी पर उसका भी, भगवान ये गिर जाए कब मर जाए कैसे हो जाए, घर पार करा दो, माँ बाप भाई सबके सब। क्यों? उसके प्रति ये भाव ऐसा होता है। फिर मान लो कि कोई बहुत बोल्ड महिला हो गए कि मैं अपने बच्चे की हत्या ना करूंगी ना करने दूंगी, ऐसा होता ना, कम से कम सिनेमा में तो होता ही है, दुनिया में होता होता नहीं होता हो, और वो बच्चा आ भी जाए लोक में तो भी उसका आठवां नहीं मनाया जाता, भोजन नहीं कराए जाते, बाजे नहीं बजते, मंगल गान नहीं होते, लड्डू नहीं बांटे जाते हैं, वो नाचने गाने वाले आते हैं पवैया, उनको कोई हजारों रुपए दान नहीं दिया जाता है। क्यों? बच्चा होने की प्रक्रिया तो एक ही है, इन दोनों में इतना अंतर क्यों? क्योंकि एक अपने स्वपति के संयोग से हुआ है, और एक पर पुरुष के संयोग से हुआ है, इतना ही फर्क है ना। तो पर पुरुष के संयोग से हुआ है वो आत्मा के अपमान का कारण है, और स्वपुरुष पति के संयोग से हुआ हो तो वो पत्नी के सम्मान का कारण है। ऐसे ही ये ज्ञान आदि दर्शन संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र ये अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, इसलिए जो सम्मान दिलाने लायक है सम्मान के कारण है, और वे पर के लक्ष्य से होते हैं। पर के लक्ष्य से होने वाले भाव वो आत्मा का अपमान कराने वाले हैं, आत्मा को दुख के कारण हैं। तो जो दुख रूप हों दुख के कारण हों वे कभी अपने नहीं माने जा सकते हैं। ये आश्रय भाव जिनके लिए पराया बताया जा रहा है अगली गाथाओं में कहेंगे, दुखा दुख फलत्य ना दूये निमित्तये तेहम, के वे दुख रूप हैं और दुख रूप फलते हैं, इसलिए ज्ञानी जन उनसे निवृत्ति लेते हैं। हाँ बोलो समझ में। आत्मा में जो पर्याय पैदा होती है उपादान रूप से, तो दोनों की एक ही प्रक्रिया है। गुरुदेव जी से कहो तो वो कहते अशुद्ध उपादान की वजह से राग पैदा होता है, अशुद्ध उपादान की वजह से ज्ञान पैदा होता है। ऐसे उपादान के लिए दो भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। यदि शुद्ध अशुद्ध के भेद से हटा दो तो कहेंगे दोनों का उपादान एकमात्र आत्मा ही है, कहेंगे दोनों का त्रिकाली उपादान आत्मा है, आत्मा का ज्ञान गुण है चारित्र गुण है, यही कहेंगे या नहीं कहेंगे बोलिए। और एक स्वनिमित्तक है एक परनिमित्तक है। खानियां तब चलता जिन लोगों ने पढ़ी होगी स्वाध्याय किया होगा गहराई से, बहुत कम लोग होंगे ऐसे आज तो होंगे क्या, लेकिन जब वो लिखी गई थी पढ़ी गई थी तब भी लोग उसको पढ़ने वाले बहुत कम थे। उसमें स्वनिमित्तक और परनिमित्तक की चर्चा है। ये देखो अपना आत्मा भी अपने लिए निमित्त कहलाता है, पर तो निमित्त होता ही है। जैसे देखिए स्त्री पुत्र के लक्ष्य से राग हुआ तो वो विकार कहलाया ना, क्योंकि स्त्री पुत्र पर हैं और उनके लक्ष्य से हुआ, तो जो जिसके लक्ष्य से हुआ उन्हें निमित्त कहते हैं ना, उन्हें कहते हैं गे रूप निमित्त। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, गे रूप निमित्त बोलते हैं ना। तो जब वे गे रूप निमित्त हैं, तो जब भगवान आत्मा का ज्ञान का गे बना था तब सम्मत दर्शन ज्ञान चार्थ पैदा हुए थे, तो गे रूप निमित्त कौन हुआ? अपना आत्मा निमित्त है और उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। उसको बोलते ना स्वहेतुकत्व। अभी कि हमने साहब ऐसा भी लिखा भेजा कि कोई हेतु नहीं होता, स्वहेतु नहीं होता है, लिखा हम बताते क्यों लिखा कैसे लिखा। एक बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है क्या, तो उससे पूछा भैया तुम बड़े भैया हो कि छोटे, कि मैं ही बड़ा हूं। वो कि छोटा कौन है, कि मैं ही छोटा हूं, मैं ही भाई हूं और मैं ही बहन हूं। क्या है इसका, देखिए पागल हो गया, ये भाई भी है और बहन भी है। ऐसा तो हमने कोई आज तक देखा नहीं, यही बड़ा है यही छोटा है। अरे भाई ना मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। इसको इस भाषा में भी कहा जाता है कि मैं ही भाई हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही छोटा हूँ। माँ बाप तो कहते हैं हमारा तो जो कुछ है सो यही है, चाहे बड़ा कह लो चाहे छोटा कह लो चाहे लड़की कह लो चाहे लड़का कह लो, कहते कि नहीं कहते। हाँ तो वो कहते हैं हमारे लिए तो आत्मा है, चाहे उपादान कह लो चाहे निमित्त कह लो, उसमें से पैदा होती है सम्मत ज्ञान चार्थ की पर्याय, इसलिए उपादान है। वो ज्ञान का गेय बनता है उस समय, इसलिए वो गेय रूप निमित्त है। बोलो निमित्त कह लो चाहे उपादान कह लो, पर चाहे कह लो कि मेरे बड़े भाई हैं ही नहीं, छोटे भाई हैं ही नहीं, बहन है ही नहीं, मतलब ये कहीं मैं काय का निमित्त तो काय का उपादान, पर मैं तो मैं ही हूं। कितनी स्पष्ट बात है, दोनों तरह का कथन निर्माण में मिल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपको नए चक्र चलाना आता हो, ऐसा लिखा है प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है कि नहीं, गुरु भवंती शरणम प्रबुद्ध ने चक्र संचारा कि भैया ऐसे जीवों को एक गुरु ही शरण है। देवसाज गुरु में गुरु देव छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया कि देव तो अभी साक्षात है नहीं, पर अभी अनंत भगवान होंगे भी तो हम उनको परम गुरु कहेंगे, तो वे भी गुरु में आ जाएंगे क्यों। और शास्त्र जो है वो हमको कुछ बोल बोल के समझाते नहीं है, और हम जो समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे तो नहीं समझे, फर्क है। लेकिन गुरु ही शरण है, लेकिन कैसे गुरु। प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, जो नए चक्र के चलाने में चतुर हैं वो गुरु है, और वे ही हमारे लिए सहज हैं। यदि वो नए चक्र के चलाने में चतुर नहीं है तो वो हमारे गुरु नहीं बन सकते हैं। कि क्यों कि वे गुरु तो कैसे होते हैं, आप डूबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। मैं नहीं कहता हूं, उसमें ही लिखा है कि ये नए चक्र ऐसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पर, क्या चलती है ना ऐसी, और कटते हैं दूसरे के माथे के नहीं गए। तो अपने माथे पर चला तो अपना माथा कटना चाहिए ना, और जब दूसरे के माथे पर चला तो दूसरा करना चाहिए। तो चलाई जाती है अपने माथे पर और कटते हैं दूसरों के माथे। लेकिन वो कहते हैं कि यदि चलाने वाला चतुर नहीं हुआ तो अपना भी कर सकता है। मूर्धानम चतति है ना, अत्यंत निषधारम जिनवरस्य न चक्रम, समझे ना, खंडित धार्यमानम, धार्यमानम जो धारण करेगा उसके सिर को भी खंडित कर सकते हैं। जरा भी चूके और उसकी लचक तलवार की होती ना, वो जरा ऐसी आ गई अपना गर्दन भी कर सकती है। ऐसे नए चक्र को चलाओ, वो चलाने में जरा सी गलती की तो अज्ञान कटने की बजाय ज्ञान कट सकता है, कर्म कटने की बजाय धर्म कट सकता है, हैं? इसलिए कहते हैं अत्यंत चतुर जो गुरु है उसमें निष्णात, निष्णात शब्द लिखा कर नहीं लिखा, नए चक्र चलाने में जो निष्णात गुरु हैं वे ही शरण हैं। ये अपेक्षाएं हैं कि यहां ज्ञान से, ज्ञान पर्याय से, ज्ञान पर्याय से अभेद बताना है और राग पर्याय से भेद बताना है। वो 29 प्रकार के भावों में ज्ञान पर्याय को नहीं लिया, इनको लिया है ना। देखो उसमें भी लिखा है वर्णादि अरुरागादि तेने जे भाव को न्यारा किया, पर्याय 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 की भी तो है, वो दृष्टि दूसरी है भाई, वो उसको चलाने की दूसरी विधि है। कि क्या है कि तुम पर्याय को शामिल करना है, फिर वो माने जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है उस आत्मा में तुझे पर्याय को शामिल करना है, तो कल भूतकाल की पर्याय को शामिल करेगा ना कि हाँ तुझे सब नष्ट हो गई तो तू भी नष्ट हो गया, मतलब तू नष्ट है फिर। कि भविष्य की करेगा कि अभी आई नहीं है, बोल क्या अभी तू है ही नहीं, कि वर्तमान की को करूंगा मैं, वो तो है ना, नष्ट हुई है और आ गई है। कि बेटा उसे करेगा तो विषय बनाएगा कौन, समझ में आया क्या नहीं आया। पर्याय तो विषय बनाने वाली है, वो विषय में शामिल हो जाएगी तो विषय बनाने वाला कौन रहेगा। जब शादी होती है ना तो कुछ लोग बराती होते हैं, कुछ लोग घराती होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बराती भी होते हैं और घराती भी होते हैं, समझ नहीं आया नहीं। मान लीजिए कि आपके और आपके लड़का लड़की का संबंध तय हो गया और मेरे दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं, तो दोनों कार भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, और दोनों ही की शादी में मैं आऊंगा तो मैं दोनों के यहां ड्यूटी बजाऊंगा कि नहीं बजाऊंगा, लड़की वाले के यहां भी जाऊंगा और लड़के वाले के यहां भी जाऊंगा, क्यों दो मिनट में बारात में पहुंच जाऊंगा तो बराती बन जाऊंगा, दो मिनट में इधर आगे खड़ा हो जाऊंगा तो घराती बन जाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है कई दफे। लेकिन और सब बन जाए, लेकिन लड़की का बाप लड़के का बाप तो
تو نہیں بدل سکتے, لڑکی کا باپ تو باراتی نہیں بن سکتا, لڑکے کا باپ تو گھراتی نہیں بن سکتا, اور بن جائیں تو بن جائیں, لیکن لڑکی تو براتی نہیں بن سکتی, لڑکا تو نہیں بن سکتا, پھر دو کو تو ایک پارٹی میں رہنا ہی پڑے گا, وہ پالا نہیں پلٹ سکتے. دو بھید وگیان کرنا ہے نا, ایک تو ترکاری تو بھگوان آتما, تو بھوت کال کی پرجائیں نشٹ ہو گئیں, ان کے ساتھ ناتا جوڑنے کا مطلب ہے رو, اب اس کی پرجائے آئی نہیں ہے, اس کے ساتھ ناتا جوڑے گا کیسے, اور برتمان کی پرجائے ہے تو اسے جسے وشے بنانا ہے اس نے شامل کر لیا, تو وشے بنائے گی کون, اس لیے وہ پرجائے الگ کھڑی ہے, وہ اپیکشا یہ ہے, وہاں جان اجان کا بھید نہیں ہے, یہاں جان اور راگ کا بھید ہے. لوگوں میں پڑھتا ہوں اب دیو ٹیکا, ہم نے کہا تھا نا کہ ٹیکا پڑھوں گا تو اب آپ کو اسپشٹ ہوتی جائے گی بات. جیسے یہ آتما جن کے تعداد میں شدھ سمبندھ ہے, ایسے آتما اور گیان میں وشیش انتر نہ ہونے سے ان کے بھید کو نہ دیکھتا ہوا نسنکتیا گیان میں آتم پنے پرورتا ہے, وہاں گیان میں آتم پنے پرورتا ہوا وہ گیان کریا کا سوبھاؤ بھوت ہونے سے نشید نہیں کیا گیا ہے, اس لیے جانتا ہے جاننے روپ پرنمت ہوتا ہے. اسی پرکار جب تک یہ آتما, دیکھو بھائی اتنا لمبا واقعہ ہے, میری کتاب تم کو رکھنے کو بولا تھا نا, میں نے کتنی سرل بھاشا بنائی ہے اس کی, کل رکھنا ہے میری کتابیں تم کو, تم یہ رکھ لینا جسے ملان کر لینا کہ کہاں گڑبڑی لگی, کچھ چاہیے نا غلطیاں کھودنے والے بھی چاہیے ہے نا, کھودنا, لیکن اتنا لمبا یہ اتنا باغ ہے لمبا, ایک پیج میں ختم ہی نہیں ہو رہا, وہ سب گڑبڑا جاتا ہے, میں نے اسے بہت ویوستھت کر دیا. ابھی اتنی سی بات ہے, پھر تمہیں سب سن لو کہ گیان اور آتما کا جو سمبندھ ہے وہ تعداد میں سمبندھ ہے, من بہت نزدیک کا سمبندھ ہے, ایسا سمبندھ ہے کہ ان کا کبھی ایک سیکنڈ کو بھی ویوگ نہیں ہوتا ہے, اور جو اپنا ہوتا ہے اس میں نسنگ پروتی ہوتی ہے, راگ کے ساتھ آتما کا ایسا سمبندھ نہیں ہے, لیکن یہ اجانی راگ کے ساتھ ویسا ہی سمبندھ مان لیتا ہے, تو جیسا جان میں پروت ہوتا ہے ایسا ہی یہ راگ میں بھی پروت کرنے لگتا ہے. یہ بات ہے, پڑھنا شانتی ہے, دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے, کمی تو بالکل نہیں ہے, سوال ایسا ہے کہ انہوں نے 250 برس پرانی بھاشا میں لکھا تھا, تو اس وقت کی بھاشا گد کا وکاس ہی نہیں ہوا تھا, ابھے کمار جی جو ہے سو ہے جو ہے سو ہے ایسا ہی گد تھا اس وقت, پورے ہندی ساہت میں نہیں ہے, ایسی نہیں ہے جو اکیلے اپنی جینیوں میں نہیں ہے, ہندی گد ساہت کے فاؤنڈر پانڈے راج مل جی ہیں, اور اس کو پرمارجت گد کے پد تک پہنچانے والے ٹوڑے مل جی ہیں, کوئی ہندی ساہت میں کوئی اجین ودوان نہیں ہے ان کی ٹکر کا, جو ٹوڑے مل جی کی ہندی ہے اس زمانے میں ایسی ہندی کسی بھی اجین ودوان کی بھی نہیں ہے, اور پانڈے راج مل جی نے جس زمانے میں ہندی لکھی اس وقت ہندی لکھی نہیں جاتی تھی, اکیلی روکڑ بہی میں لکھی جاتی تھی, کہ دیوالی کی چٹھیاں لکھتے تھے اس میں لکھی جاتی تھی بس, جو پتر ملتے ہیں اتوا جو تم بچوں کا گہنا رکھتے تھے نا بنیا, تو اس میں لکھی جاتی تھی, تو وہ ہندی ہے گد, تو اس سمے کا وہ گد, اور پھر اس کا گجراتی میں انواد کیا, اور پھر گجراتی کا ہندی میں انواد کیا, اور کتنی کتنی مریاداؤں کے بیچ میں سب ہم نے دیکھا ہوگا ہے, اب آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے, خیال نہیں نا, تو وہ اس لیے اس میں اتنی تیر رہ گئی ہے نا. اب ہمیں دو اور اپنا یہ سدھانت مکھی کی جگہ مکھی مار دو, آپ کی سمجھ نہیں نا, تو یہ سدھانت اور گڑبڑ ہو گئی, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیسے کمال کیا, ایک تو ہم نے ماتھے پہ بوجھا نہیں رکھا کہ جے چند جی کے فلانی جی, ہم تو امرت چند بھی پڑھی, جے چند بھی پڑھی, اجے چند بھی پڑھی, سب پڑھی, اور پڑھ کر کے اندر یہاں لے گئے, اور پھر پوری طرح سمجھ کے پھر یہاں سے نکال کے سیدھی لکھی. ہم کسی کے بندے تو ہیں نہیں. کیا آپ کہو گے صاحب اس میں ایسا نہیں ہے؟ اب تم تو یہ بتاؤ کہ یہ ارتھ ہے کہ نہیں ہے اس گاتھا کا, یہ ہمیں تم کے ورت تو نہیں ہے, یہ اس کے ورت تو نہیں, یہ بتاؤ. تو اس لیے ہم اسے سیدھی بنا سکے. اور آج کے زمانے میں گد کا وکاس بھی بہت ہو گیا ہے, ہمارا ہی نہیں یوگدان, اس میں سمے کا بھی یوگدان ہے. نہیں تو سمے میں آ گئی نا پرستھتی, تو اس کی وجہ سے وہ اس میں ہی ہو گیا. اور وہ بات ایسی ہوتی تھی نا کہ پرانے کے زمانے میں جو کوئی ساری سماج کا بھوجن, جسے آپ گجرات میں کیا بولتے ہیں وہ نمکارسی, ایسا کوئی بھوجن کراتا تھا تو اسے کرنے والے سینکڑوں لوگوں کے من میں ایسا وکلپ آتا تھا کہ ایسا میرا کم موقع آئے گا کہ جب میں بھی ایسا کروں. سوچتے تھے کہ نہیں سوچتے تھے؟ ابھی ایک آدمی کے یہاں جا کر کے سب لوگ بھوجن کو بیٹھے تھے, پروسا دیا تھا, پھر وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ صاحب جیو, تب لوگ سب جیونا شروع کرتے تھے, ایسا نہیں تازہ شروع کر دیتے تھے, ہوتا نا. تو اتنے میں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا اور ایک بلی نے جھپٹا مارا, ایک دم کوٹھار میں, بھوجن کے کوٹھار میں گھسی, تو اس نے ایک دم دوسرے نوکر نے اسے ڈنڈا لے کے روکا, روکا تو بلی وہی مر گئی. مر گئی تو پھٹافٹ اس آدمی نے لے کر کے اور ایک اس سے برتن سے اسے ڈھک دیا کہ کوئی کی نگاہ میں نہیں پڑے, نہیں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور کوٹھار میں بلی چلی گئی, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ڈھک دیا اور ڈھک دیا اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا صاحب سب لوگ جی لیں, سب لوگوں نے جی لیا. ایک آدمی جس کے من میں یہ تھی کہ میرا دل بھی یہ کب آئے گا, وہ یہ سب باتیں دھیان سے دیکھ رہا تھا, کیونکہ اس کے آئے گا تو اسے بھی کرنا پڑے گا نا. ایک دن ایسا آ گیا آ گیا اور سب لوگ جیونے بیٹھ گئے. اب وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور سب لوگ کہیں بولو, وہ دیکھے کہ بلی تو آئی نہیں, ایک تو پورا ہونا چاہیے, بلی آئے نوکر سے کہہ دیا ڈنڈا سے مارنا اور پھر میں اسے ڈھکوں گا اور پھر کہوں گا حتیم ایسا, سمجھ نہیں آتی. اب وہ بلی تو آنا نہیں, پھر وہ نہیں آئی اور سب لوگ کہہ رہے کیا آپ کھڑے ہو, ارے آجا دو نا, آجا دو نا, کہ اب میں کیا آجا دوں, اب جیو کیا کروں, میں تو آئی نہیں. تو ہمارے ایسا ہے, ہم ایسے نکلتی ہو گئے ہیں, ہمیں ایسی مکھی کی جگہ مکھی میں نہیں ملنا چاہیے. ابھی کمار جی, تو اس سے جو ٹیڑ رہ گئی, آپ میرے سمجھ ٹیڑ کیوں نکل سکتی تھی, یہ ٹیڑ کھلنا ہے نا, یہ ٹیڑ نکل سکتی تھی اور میں نے اس ٹیڑ کو نکالنے کے لیے کوشش کی, اور میں جانتا تھا کہ کوشش کروں گا تو اب بھی حالے کہیں گے اس کا ایسا نہیں ایسا نہیں. دیکھو بھائی, سیدھی آتم خیاتی سے ملان کرو اور اس میں سے رنت مات بھی انتر نکل جائے تو بتاؤ. جیتن چھابڑا سے ملان کر لو, گردیو سے ملان کر لو, سب سے ملان کر لو, یہ بتاؤ بھاو میں کیا فرق ہے, کیوں پھر بتانا کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی مائی جلال نے بتائی نہیں. آج تک کئی دفعہ چیلنج میں کر چکا ہوں, کرنا نہیں چاہیے, کرنا چاہیے, کیوں نہیں, کیوں اسے کچھ مطلب, بھائی کوئی غلطی ہو تو بتاؤ نا, سدھار لینا. غلطی بتانے کے لیے تو خون پسینہ یہ کرنا پڑتا ہے, ساری دنیا سوتی ہے تو رات کے دو دو بجے تک جگنا پڑتا ہے. وہ ارد نسا کا سناٹا اور بن میں بنچاری چرتے ہوں, کیوں تب شانت نراکل مانس بے تتوں کا چنتن کرتے ہوں, تب شانت نراکل مانس ہم, اسے لکھتے رہے پڑھتے رہتے ہیں دو دو بجے تک, تب جا کے کرنا پڑتا ہے خون پسینہ یہ کرنا پڑتا ہے. غلطی نکالنے کے لیے تو بھائی صاحب ایک سب سے بڑھیا غلطی ہے کہ یہی غلطی ہے کہ لکھی کیوں. تورو مجی نے اس کا جواب دیا بہت اچھا, سنایا تھا نا پیپر میں, ابھی کمار جی یاد ہے بولو. سنسیادی ہوتے کچھ جو نہ کیجیے گرنتھ تو چھد مستن کے رکے گرنتھ کرن کو پنتھ. کیا ارتھ ہے سر؟ کہاں لکھا ہے؟ سمیہ گیان چندرکا کی پیٹکا میں پنڈت ٹوڈا مل جی کا یہ دوہا ہے. اور یہ دوہا کا کیا ارتھ ہے
कि यदि कोई गलती रह गई तो इस डर के मारे कोई ग्रंथ नहीं लिखेगा तो क्या होगा, क्या लिखा, संशयादि होते किछु, कि ऐसा संशय है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए और वो किताब ही नहीं लिखे, तो छदमस्तन के रुके ग्रंथ करण को पंथ, तो फिर छदमस्त ग्रंथ लिख ही नहीं सकते, छदमस्त नहीं लिखेंगे तो कौन केवली लिखेंगे, क्या समझ में आता है, केवली भगवान लिखते हैं, ये छदमस्त ही लिखते हैं, कुंदकुंद भी छदमस्त थे, अमृतचंद भी छदमस्त थे, ये छदमस्त का अर्थ ही नहीं समझते हैं, बाद में गुणस्थान तक छदमस्त होते हैं क्यों, छदमस्त ही लिखते हैं ना, ज्ञान न छो समझ छो से एक ज्ञान के छो सम वाले ही लिखते हैं, छाए ज्ञान वाले नहीं लिखते हैं, ज्ञान का छो सम नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, तो चाहिए ना ज्ञान का, ये तो आना ही मुझे कही है, तो ग्रंथ करण को छदमस्तन का पंथ रुक जाता ना, तो नहीं रुका, तो अभी एक ही ग्रंथ नहीं लिखे जाते, यदि ये सोचते तो लेकिन हम बहुत सावधानी रखेंगे, ये सब करेंगे, ये करेंगे, वो सब करेंगे, ये सब आप समझे ना, और फिर सबको सबसे भी निवेदन करेंगे क्या, सुधी सुधार पड़ो सदा जो पावो भविकुन, कहीं कोई गलती रह जाए तुम सुधार लेना, तुम्हें पावर दे रहे ना, क्यों तुम लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उस गलती को सुधारने के लिए जिसने वो लिखी है उससे ज्यादा अकल चाहिए, उसे ज्यादा मेहनत चाहिए, तब वो गलती निकाल सकता है, यदि तू इस के काबिल अपने को समझता है तो अवश्य निकाल है, नहीं तो नहीं निकाल सकता है, तो इसलिए कहते देखो भाई कि आत्मा का तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ है, राग के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, और ये तादात्म्य संबंध वाले के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार वो कौन, और उसे दूसरे संबंध का नाम क्या है, संयोग सिद्ध संबंध, गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की ना, तो उसने तीन संबंध बताए हैं, पढ़ना भी जाके गुरुदेव का प्रचन पढ़ना, एक तादात्म्य सिद्ध संबंध, एक संयोग सिद्ध संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, तो आत्मा का और ज्ञान का है तादात्म्य सिद्ध संबंध, आत्मा का और राग का क्रोधादिक का है संयोग सिद्ध संबंध, और आत्मा का और देह का है एक क्षेत्रावगाह संबंध, ये तीन प्रकार के संबंध बताए, तो जिनके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध वालों के साथ अलग व्यवहार होता है, संयोग सिद्ध वालों के साथ अलग व्यवहार होता है, और एक क्षेत्रावगाह वालों के साथ अलग व्यवहार होता है, ये अज्ञानी जैसा ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है ऐसा ही संबंध इसका मान लेते हैं, काय का, क्रोध का और आत्मा का, और बस ऐसी निशंक प्रवृत्ति उसमें करने लगते हैं, निशंक प्रवृत्ति करते हैं तो उसे कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है तो द्रव्य कर्म बन जाते हैं, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है, तीन संबंध हो गए ना, पहले तादात्म्य जैसा माना संयोग सिद्ध संबंध था तो एक क्षेत्रावगाह संबंध बंध रूप संबंध हो जाता है, इस तरह बंध की प्रक्रिया है।